का था, रूह वही रूप नया।
अगली कहानी जो मैं आपके लिए लेकर आ रही हूँ, उस कहानी का नाम है छींटदार फीते का रहस्य, और इसका संकलन किसी परिचय का मोहताज नहीं, वो संकलन है शेरलॉक होम्स का संकलन, और शेरलॉक होम्स के रचयिता रहे हैं ऑथर कॉनन डॉयल। अपने उन 70 खास मामलों के नोट्स पर एक नजर दौड़ाते वक्त, जिनमें अपने मित्र शेरलॉक होम्स के पिछले 8 सालों के काम करने के तरीकों का मैंने अध्ययन किया था और पाया कि उनमें से बहुत सारे मामले दुखद, कुछ मज़ेदार और अधिकतर आश्चर्यजनक थे। वे सब कोई मामूली मामले नहीं थे। उसने इन्हें धन कमाने के लिए नहीं, बल्कि अपने काम से प्यार की वजह से किया था। वो उन जांच पड़तालों से स्वयं को अलग कर लेता था जो असामान्य और आश्चर्यजनक नहीं होती थी। मुझे याद नहीं कि इस तरह के कई केसों में स्टॉक मोरॉन में रॉयलॉट्स के उस जाने माने परिवार के साथ घटी घटना की तुलना में किसी और ने अधिक असाधारण तरह की घटना सुलझाई हो। ये घटना होम्स के साथ मेरे जुड़ने के शुरुआती दिनों में घटी थी। उन दिनों हम अविवाहित थे और बेकर स्ट्रीट के एक ही कमरे में साथ साथ रहा करते थे। उस समय इस मामले की गोपनीयता का एक वादा किया गया था। पिछले महीने उस महिला जिसने वो वादा किया था, उसकी असामयिक मृत्यु ने मुझे इससे मुक्त कर दिया। अब इस सच्चाई को रोशनी में लाना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर ग्रिम्सबॉय रॉयलॉट की मृत्यु के बाद काफी अफवाहें फैली हुई थी, जिन्होंने इस मामले की वास्तविकता से कहीं ज्यादा इसे भयावह बना दिया था। ये अप्रैल 1883 की शुरुआत थी और मैंने एक सुबह शेरलॉक होम्स को कपड़े पहने हुए पूरी तरह से तैयार अपने बिस्तर के बगल में खड़े पाया। वैसे तो वो देर से उठने वाला व्यक्ति है और घड़ी में उस समय सिर्फ 7:15 ही बजे थे। मैंने उसकी तरफ आंखें झपकाते हुए आश्चर्य से देखा, जिसमें थोड़ी चिढ़ भी थी, क्योंकि मैं अपनी आदतों के मामले में काफी नियमित हुआ करता हूँ। होम्स ने कहा, मुझे माफ करना वॉटसन, मैंने तुम्हें जगा दिया, पर बात बिल्कुल साधारण सी है कि आज सुबह मिसेज हटसन ने मेरा दरवाजा खटखटाया और मुझे जगा दिया और मैंने तुम्हें। अरे, ऐसी क्या बात हो गई, क्या आग लग गई क्या? नहीं नहीं, ऐसा लगता है कि एक युवती बदहवास हालत में आई है जो मुझसे मिलना चाहती है। अभी भी वो बैठक कक्ष में मेरा इंतजार कर रही है। महानगरों में इतनी सुबह जब जवान औरतें इधर उधर घूमती फिरती हैं और नींद में पड़े लोगों को उनके बिस्तर से उठाती हैं, तब मेरा मानना है कि बहुत ही खास बात होगी जिसे वो बताना चाहती है। क्या इससे ये नहीं लगता कि ये केस दिलचस्प होगा? मुझे यकीन है कि तुम्हें शुरू से ही इसमें मजा आएगा और मेरे विचार से मुझे तुम्हें एक मौका देना चाहिए। अरे मेरे प्यारे दोस्त, मैं किसी भी कीमत पे इसे नहीं खोना चाहूंगा, चलो। होम्स की पेशेवर छानबीनों का अनुसरण एवं अपने अंतर्ज्ञान की तीव्रता से इनके समाधान की प्रशंसा से बढ़कर मेरे लिए और कोई प्रसन्नता ही नहीं थी। जो भी केस उसे दिए गए, उसने उन्हें बड़े तार्किक आधार पर सुलझाया था। मैंने जल्दी जल्दी अपने कपड़े पहने और बैठक कक्ष में अपने मित्र का साथ देने के लिए कुछ मिनटों में ही तैयार हो गया। वहां एक पर्दा नशी महिला काले कपड़ों में खिड़की के पास बैठी थी। जैसे ही हम कमरे में घुसे, वो खड़ी हो गई। होम्स ने प्रसन्नता पूर्वक कहा, गुड मॉर्निंग मैडम, मेरा नाम शेरलॉक होम्स है, ये हैं वॉटसन, मेरे खास दोस्त और सहयोगी, इनके सामने आप बेझिझक अपनी बात कह सकती हैं। भाई वाह, मुझे ये देखकर खुशी हो रही है कि मिसेज हटसन ने अंगीठी जलाने की समझदारी दिखा दी है। इस अंगीठी को आप अपने पास ही रख लीजिए और मैं एक कप गरम कॉफी का ऑर्डर देता हूँ, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि आप ठंड से कांप रही हैं। उस महिला ने अपनी जगह बदलते हुए धीमी सी आवाज में कहा,
मैं ठंड की वजह से नहीं कांप रही हूँ।
तब क्या है?
ये डर है मिस्टर होम्स, डर।
इतना कहकर उस महिला ने अपना नकाब ऊपर उठाया। अब हम देख सकते थे कि वो महिला वाकई बड़ी दयनीय स्थिति में थी। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और उसकी बेचैन डरी हुई आंखें शिकार के लिए पीछा किए जाने वाले जानवर की आंखों की तरह लग रही थीं। उसके चेहरे और शरीर से पता चलता था कि वो लगभग 30 वर्ष की होगी, लेकिन उसके बाल असमय ही पक गए थे। उसकी आंखें थकी हुई थीं, मरियल सी थीं। होम्स ने उस पर अपनी तेज और अनुभवी नजर डाली। होम्स ने आगे की ओर झुकते हुए सांत्वना भरे शब्दों में उसके हाथों को थपथपाते हुए कहा, अरे डरिए मत, मैं सब ठीक कर दूंगा। मुझे लगता है आप आज सुबह की ही ट्रेन से आई हैं।
तो क्या आप मुझे जानते हैं?
नहीं, मैंने आपकी हथेली पर, इनफैक्ट बाई हथेली पर वापसी का टिकट देखा है। आप सुबह जल्दी ही चल पड़ी होंगी और स्टेशन पहुंचने के लिए आपने कच्चे रास्ते पर घोड़ा गाड़ी से भी यात्रा की होगी। महिला जोर से चीखी और मेरे सहयोगी की ओर अचरज से देखने लगी। वो मुस्कुराते हुए बोला, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है मैडम, आपके जैकेट की बाई बांह पर कम से कम 7 जगह कीचड़ के धब्बे लगे हैं। ये धब्बे बिल्कुल ताजा हैं। घोड़ा गाड़ी के अलावा और कोई सवारी इस तरह का कीचड़ नहीं उछालती, और फिर आप तो चालक के बाई ओर बैठी होंगी ना। वो बोली,
आपका जरिया चाहे जो भी हो पर आप बिल्कुल सही हैं। मैं घर से सुबह 6 बजे से पहले चली और 20 मिनट में लेदर हेड पहुंची, फिर वाटरलू के लिए पहली ट्रेन पकड़कर मैं यहाँ आ गई। सर, मैं अब इस तनाव को और नहीं झेल सकती। अगर ये ऐसे ही बना रहा तो मैं पागल हो जाऊंगी। मेरी सहायता करने वाला कोई नहीं है। उस अकेले आदमी को छोड़कर जो ये कर सकता है। मैं आपके बारे में बहुत सुन चुकी हूँ मिस्टर होम्स। मुझे आपके बारे में मिसेज फॉरेंटुश ने बताया था, जिनकी सहायता आपने बहुत ही कठिन परिस्थितियों में की थी। उन्हीं से मुझे आपका पता मिला है। सर, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि आप मेरी सहायता कर सकते हैं और जिस अंधेरे ने मुझे घेर रखा है उस पर थोड़ी रोशनी डाल सकते हैं? इस समय आपकी सेवाओं के लिए पुरस्कार देने की मेरी कोई क्षमता नहीं है, पर 6 हफ्तों या 1 महीने में मेरी शादी हो जाएगी। तब मैं खुद की आमदनी पर नियंत्रण के बाद आपके सारे एहसान चुका दूंगी।
होम्स ने अपनी दराज खोली और उसमें से केस वाली एक छोटी सी नोटबुक निकाली, जिसे वो संदर्भ देखने के लिए अपने पास रखता था। वो बोला, फारेंटोश, ओह हाँ हाँ, मुझे वो केस याद आ गया जिसका संबंध उस दूधिया मुकुट से था। मेरा ख्याल से वॉटसन, ये तुम्हारा मेरे साथ आने वाला पहला केस था। मैडम, मैं इस मामले में आपसे सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ कि जिस तरह से मैंने अपने दोस्त के लिए काम किया था, उसी तरह से आपका भी काम करने में मुझे खुशी होगी। और जहाँ तक इनाम का सवाल है, मेरा पेशा अपने आप में ही एक इनाम है, लेकिन जब भी आपका समय अनुकूल हो आप मेरा भुगतान कर सकती हैं। अब मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, कृपया सिलसिलेवार ढंग से हर बात बताइए ताकि मैं इस मसले पर अपनी राय कायम कर सकूँ। हमारी आगंतुक ने जवाब दिया,
ओह हाँ, मेरे डर की स्थिति की वास्तविकता यह है कि मेरा डर बहुत ही अस्पष्ट सा है और मेरे संदेह बहुत ही छोटे छोटे बिंदुओं पर आधारित हैं, जो कि दूसरों को बहुत ही महत्वहीन लग सकते हैं। यहाँ तक कि जिससे मुझे सहायता पाने का अधिकार है, वो भी मुझे एक घबराई हुई औरत के रूप में ही परामर्श देता है, परंतु वो इस तरह की बात नहीं कहता। ये सब कुछ आपके सांत्वना भरे शब्दों और आपकी आंखों में मैं पढ़ सकती हूँ। मैंने सुना है कि मिस्टर होम्स, कि आप आदमी के दिल की परतों के भीतर की गहराई में छुपी हुई चीज़ें देख लेते हैं। अब आप मुझे बताएं कि इन खतरों से घिरे हुए मैं इनके बीच कैसे रह सकती हूँ?
मैडम, मैं आपकी पूरी बातें ध्यान से सुन रहा हूँ।
जी, मेरा नाम हेलन स्टोनर है और मैं अपने सौतेले पिता के साथ रहती हूँ, जो इंग्लैंड की पुरानी सैक्सन फैमिली है ना, उसके स्टॉक मोरॉन के रॉयलॉर्ड्स के आखिरी आदमी हैं।
होम्स ने स्वीकृति में अपना सिर हिलाया और कहा, मैं इस नाम से परिचित हूँ।
किसी वक्त में ये परिवार इंग्लैंड के सबसे धनी परिवारों में से एक था और इसकी जागीर की सीमाएं उत्तर में बर्कशायर और पश्चिम में हैम्पशायर तक फैली हुई थी। पिछली सदी में एक के बाद एक इसके वारिस लंपट और फिजूल खर्ची की आदतों से घिर गए थे। रिजेंसी के दिनों में ये परिवार एक जुआरी के हाथों पूरी तरह बर्बाद हो गया। कुछ एकड़ जमीन और 200 साल पुराना वो घर जो अब गिरवी पड़ा है, इसके सिवाय कुछ नहीं बचा। इसके अंतिम जागीरदार ने अपनी ज़िंदगी की गाड़ी एक अभिजात वर्गीय भिखारी के रूप में बहुत ही दयनीय तरीके से खींची है।
पर उसके एकमात्र बेटे यानी कि मेरे सौतेले पिता ने देखा कि इन्हें एक नए तरीके से अपना जीवन अपनाना चाहिए। उन्होंने अपने एक संबंधी से थोड़ा पैसे उधार लिए जिससे कि वो डॉक्टर की डिग्री हासिल कर सके। इसके बाद मेरे पिता कलकत्ता चले गए। यहाँ अपनी काबिलियत और अच्छे चरित्र से उन्होंने एक बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस जमा ली। एक दिन घर में हुई किसी लूट के कारण उन्होंने गुस्से में अपने पड़ोस में रहने वाले खानसामे को इतना मारा कि वो मर गया। फांसी की सजा से वो बाल बाल बचे। इसकी वजह से उन्हें लंबे समय तक जेल में रहना पड़ा। फिर वे चिड़चिड़े और हताश व्यक्ति के रूप में इंग्लैंड वापस आ गए। जब डॉक्टर रॉयलॉर्ड भारत में थे तो वहीं उन्होंने मेरी माँ से विवाह किया, जो कि बंगाल फौज के मेजर जनरल स्टोनर की एक खूबसूरत विधवा थी। मेरी बहन जूलिया और मैं जुड़वा हैं, और मेरी माँ की दोबारा शादी के समय हमारी उम्र केवल 2 साल की थी। मेरी माँ के पास 1,000 पाउंड सालाना आता था, और ये पूरा का पूरा ही उन्होंने डॉक्टर रॉयलॉर्ड को वसीयत कर दिया था। हालांकि हम उनके साथ इसी शर्तनामे के साथ रहते थे कि हमारी शादी होने पर हम में से हर एक को सालाना कुछ धन दिया जाएगा। इंग्लैंड वापस लौटने के कुछ ही समय के बाद मेरी माँ की मौत हो गई। वो 8 साल पहले क्रीव के पास एक रेल दुर्घटना में मारी गई। इसके बाद डॉक्टर रॉयलॉर्ड ने लंदन में अपनी प्रैक्टिस जमाने की कोशिश छोड़ दी और हमें साथ लेकर स्टॉक मोरॉन के अपने ख़ानदानी मकान में रहने चले आए। मेरी माँ ने जो पैसा हमारे लिए रख छोड़ा था वो हमारी ज़रूरतों के लिहाज से काफ़ी था, और हमारी खुशियों में बाधाएं आएंगी ऐसा हमें मालूम भी नहीं था। परंतु इस साल हमारे सौतेले पिता के स्वभाव में एक भयानक परिवर्तन आ गया है। अपने पड़ोसियों से मिलने जुलने और नए मित्र बनाने की बजाय, जो कि उन्हें वहाँ देखकर खुश होते थे, स्टोक मोरॉन के रॉयलॉर्ड वापस अपने घर आ गए हैं। उन्होंने अपने को एक कमरे में बंद कर लिया है और कभी कभी ही बाहर निकलते हैं, वो भी तब जब कोई उनके रास्ते से गुजरता है और उससे झगड़ा करने लगते हैं। गुस्से में हिंसा की सनक तक पहुंचना उस परिवार के लोगों की एक खानदानी आदत है। मेरे सौतेले पिता के मामले में मेरा मानना है कि इसकी तीव्रता का कारण एक लंबे समय तक एक गर्म मुल्क में रहना हो सकता है। उनके ऐसे असभ्य झगड़ों की एक लंबी श्रृंखला सी बन चुकी है, जिसमें 2 तो पुलिस थाने में जाकर ख़त्म हुए और फिर वे उस गांव के लिए ख़तरा बन चुके हैं। लोग बाग उनसे डर कर भागने लगे हैं क्योंकि उनमें ताकत बहुत है और वो गुस्से में बेकाबू हो जाते हैं। अभी पिछले ही हफ्ते उन्होंने वहीं के एक लोहार को 4 दीवारी से नीचे नदी में फेंक दिया। फिर जो पैसा मैंने साथ मिलकर इकट्ठा किया उसे देकर हमने उस दूसरी मुसीबत से अपने आप को बचाया। कुछ बंजारों को छोड़कर उनका कोई भी दोस्त नहीं है। उन्होंने झाड़ झंकार से भरी अपनी ज़मीन, जिससे हमारी ख़ानदानी जागीर का पता चलता है, वो भी उन बंजारों को दे दी है डेरा डालने के लिए। बदले में वो लोग अपने तंबुओं में इनका आतिथ्य सत्कार करते हैं और कभी कभी इनके साथ सप्ताहांत में कहीं दूर चले जाते हैं। भारतीय जानवर के प्रति उनकी अजब दीवानगी है, जो कि उनके पास वहां से भेज दिए जाते हैं। इस समय उनके पास एक चीता और एक लंगूर है, और ये दोनों मैदान में खुले घूमते हैं। ये गांव वालों के लिए उतने ही भयानक हैं जितना कि उनका अपना मालिक। आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मेरी बहन और मैं जिंदगी का अब तक कोई बड़ा सुख नहीं देख पाए। हमारे यहाँ कोई नौकर ही नहीं टिकता। एक लंबे समय तक हमने खुद ही घर का सारा काम किया। मेरी बहन की मौत के समय उसकी उम्र सिर्फ 30 साल की थी, फिर भी उसके बाल मेरी ही तरह सफ़ेद हो चुके थे। क्या आपकी बहन की मौत हो चुकी है? उसकी मौत अभी 2 साल पहले ही हुई है, और उसी की मौत की वजह से मैं ये आपको बता रही हूँ। आप समझ ही सकते हैं कि जिस तरह की अपनी ज़िंदगी के बारे में मैंने आपको बताया है, हम अपनी उम्र और स्थिति के शायद ही किसी और इंसान को इस तरह देखना चाहेंगे। हमारी माँ की एक अविवाहित बहन यानी हमारी एक मौसी भी हैं, जिनका नाम मिस ओनोरिया वेस्टफेल है। वे हैरो के पास रहती हैं। हमें कभी कभी ही इनके घर जाने का मौका मिलता है। 2 साल पहले क्रिसमस पर जूलिया वहाँ गई थी। वहाँ उसकी मुलाकात नौसेना के एक मेजर से हुई।
जो कि अभी भी आधी तनख्वाह पर काम कर रहा था और जिसके साथ उसका विवाह भी तय हो गया था। वापस लौटकर मेरी बहन ने इसकी जानकारी मेरे सौतेले पिता को दी। उन्होंने इस शादी का विरोध नहीं किया, परंतु शादी की तय तारीख से 15 दिनों पहले ही वो भयानक घटना घट गई, जिसने मेरी साथी को भी मुझसे छीन लिया।
शेरलॉक होम्स अपनी कुर्सी पर पीठ टिकाकर बैठा था। उसकी आंखें बंद थीं और उसका सिर कुशन पर टिका था। उसने अपनी अंधमुदी आंखें खोली और अपने आगंतुक की ओर देखा और बोला, कृपया खुलकर बताइए।
मेरे लिए इसे बताना बहुत ही आसान है, क्योंकि उस भयानक वक्त की हर घटना मेरी याददाश्त में बनी हुई है। जैसा कि मैं पहले ही बता चुकी हूं कि वो इमारत बहुत ही पुरानी है और इसका एक ही हिस्सा रिहायशी इस्तेमाल में आता है। इस हिस्से में शयन के कमरे नीचे के तल पर हैं और बैठक कक्ष इस इमारत के बीच वाले भाग में है। इन कमरों में पहला कमरा डॉक्टर रॉयलॉट का, दूसरा मेरी बहन का और तीसरा मेरा खुद का है। उन कमरों में आपस में कोई ताल्लुक नहीं है, कोई संपर्क नहीं है, पर वे सभी एक ही गलियारे में खुलते हैं। क्या मैं साफ साफ बता पा रही हूं?
बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक।
तीनों कमरों की खिड़कियां बाहर लॉन में खुलती हैं। उस भयावह रात को डॉक्टर रॉयलॉट अपने कमरे में जल्दी ही चले गए थे, हालांकि हम दोनों जानते थे कि वो सो नहीं रहे थे, क्योंकि मेरी बहन को उस इंडियन सिगार की तेज महक बहुत परेशान करती थी, जिसे पीने की डॉक्टर रॉयलॉट को आदत थी। वो अपने कमरे से निकलकर मेरे पास चली आई और वहां कुछ देर बैठकर उसने अपनी होने वाली शादी के बारे में भी कुछ बातें की। 11 बजे वो मेरे पास से जाने के लिए उठी, फिर दरवाजे पर थोड़ा रुककर उसने मेरी ओर मुड़कर देखा और बोली, ये बताओ हेलन, क्या तुमने रात के अंधेरे में किसी को सीटी बजाते सुना है?
नहीं तो, मैंने जवाब दिया।
मेरे ख्याल से सोते समय तुम्हारी आवाज तो सीटी की तरह नहीं निकलती होगी।
बिल्कुल नहीं, पर क्यों?
क्योंकि पिछली कुछ रातों से सुबह करीब 3 बजे मुझे हमेशा एक धीमी सी पर एक साफ सीटी की आवाज सुनाई देती है। मैं कच्ची नींद में सोती हूँ और इसीलिए इसकी आवाज से उठ जाती हूँ। मैं ये नहीं बता सकती कि वो आती किधर से है, शायद बगल वाले कमरे से या लॉन से। मैंने सोचा कि तुमसे पूछूं, शायद तुमने भी सुना हो।
नहीं, मैंने तो नहीं सुना। ये दूर ठहरे हुए इन बंजारों की होनी चाहिए।
हाँ, मुमकिन है, पर अगर ये आवाज लॉन में आती है तो मुझे आश्चर्य है कि तुमने कैसे नहीं सुनी।
हाँ, पर मैं तुमसे आधे गहरी नींद में सोती हूँ, शायद इसलिए।
खैर, कोई बात नहीं। वो मुझे देखकर मुस्कुराई थी और मेरा दरवाजा बंद कर दिया। फिर कुछ ही देर बाद मुझे उसके दरवाजे का ताला बंद होने की आवाज सुनाई दी।
होम्स ने कहा, सच? क्या रोजाना रात को कमरे में ताला लगाना आप लोगों की आदत है?
हमेशा।
क्यों?
मैं आपको पहले भी बता चुकी हूं कि डॉक्टर ने एक चीता और एक लंगूर पाल रखा है। दरवाजा बंद किए बगैर हमें सुरक्षा महसूस नहीं होती।
बिल्कुल ठीक, मेहरबानी करके अपनी बात जारी रखिए।
उस रात को मैं सो नहीं सकी। आने वाली बदकिस्मती की एक धुंधली सी अनुभूति ने मुझ पर असर कर दिया था। आपको याद होगा कि मेरी बहन और मैं जुड़वा बहने थी, और आप जानते ही हैं कि दो समान आत्माओं के बीच संपर्क का कितना सूक्ष्म बंधन होता है। वो रात बहुत ही भयानक थी। बाहर हवा में तेज गर्जन की आवाज थी और खिड़कियों पर बारिश की चोट और थपथपाहट हो रही थी। अचानक इस तेज आंधी के थपेड़ों के बीच ही एक औरत की डर से भरी चीखने की आवाज सुनाई दी। मैं समझ गई कि यह आवाज मेरी बहन की है। मैं अपने बिस्तर से उछल कर उठी, मैंने शॉल लपेटा और गलियारे की तरफ भागी। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, मुझे सीटी की एक धीमी सी आवाज सुनाई दी। ये ठीक वैसी ही आवाज थी जैसी कि मुझे मेरी बहन ने बताई थी, और कुछ ही पलों के बाद एक झनझनाहट की आवाज सी आई, जैसे कि कोई स्टील की या लोहे की भयानक सी बड़ी सी चीज नीचे गिर पड़ी हो। जब मैं दौड़कर अपनी बहन के कमरे में पहुंची तो मैंने देखा कि उसका दरवाजा खुला हुआ है और कब्जे पर धीरे धीरे झूल रहा है। मैंने डरते हुए देखा कि न जाने सामने क्या आने वाला है। गैलरी के लैंप से आने वाली रोशनी में मैंने अपनी बहन को देखा। उसका चेहरा डर से पीला पड़ गया था। उसके हाथ सहायता के लिए आगे की ओर फैले हुए थे और उसका पूरा शरीर किसी शराबी की तरह आगे पीछे झूल रहा था। मैं भागकर उसके पास गई और उसे अपनी बाहों में समेट लिया, पर उसी समय उसके पैरों ने जवाब दे दिया और वो जमीन पर गिर पड़ी। वो तड़पते तड़पते भयानक तरीके से अकड़ गई थी। पहले पहल मुझे लगा कि उसने मुझे पहचाना नहीं, पर वो चीखती हुई आवाज में बोली, जिसे मैं कभी भी नहीं भूल पाऊंगी, हे भगवान, हेलेन, एक फीता था यहां, एक छींटदार फीता। जैसे कि कोई ऐसी बात थी जिसे वो कहना चाहती थी, और उसने डॉक्टर के कमरे की ओर हवा में इशारा किया। परंतु उसके शरीर की आई अकड़न ने उसके शब्दों को बाहर नहीं निकलने दिया। अपने सौतेले पिता को चिल्लाकर आवाज देते हुए मैं बाहर की ओर भागी। हड़बड़ी में ही उनके कमरे के ड्रेसिंग गाउन से मेरी मुलाकात हुई। जब वे मेरी बहन के पास पहुंचे तब तक वो बेहोश हो चुकी थी। हालांकि उन्होंने उसके मुंह में ब्रांडी डाली और गांव में ही चिकित्सा की सहायता के लिए भेजा, परंतु सारी कोशिशें बेकार हो गई और वो बिना होश में आए ही धीमे धीमे मौत के आगोश में चली गई। होम्स ने कहा, एक मिनट रुको, क्या तुम उस धातु की आवाज और सीटी के बारे में निश्चित हो? क्या तुम कसम खाकर कह सकती हो? उसकी मौत के बाद हुई छानबीन में मुझे यही पूछा गया। मेरा यही मानना था कि मैंने इसे सुना था, मगर आंधी और पुराने हो चुके घर की आवाज में हो सकता है मुझे धोखा हुआ हो। क्या तुम्हारी बहन कपड़े पहनकर तैयार थी? नहीं, वो अपने सोने वाले कपड़ों में ही थी। उसके दाएं हाथ में एक जली हुई माचिस की तीली थी और बाएं हाथ में माचिस की डिबिया थी। इससे ऐसा लग रहा था कि जब उसने खतरा महसूस किया होगा तब इसे जानने के लिए उसने माचिस जलाई होगी। छानबीन करने वाला किस नतीजे पर पहुंचा? चूंकि डॉक्टर का व्यवहार इस प्रांत में बड़ा ही खतरनाक है, इसीलिए मामले की छानबीन करने वाले ने बहुत ध्यानपूर्वक छानबीन की थी, परंतु वो मौत के कोई संतोषजनक कारण ढूंढ पाने में असफल रहा। मेरे सबूतों से पता चलता है कि दरवाजा भीतर से ही बंद था और खिड़कियों में पुराने फैशन की लोहे की छड़ें लगी थी जिनसे सारी रात सुरक्षा रहती थी। चारों तरफ की दीवारें काफी मजबूत थीं और जमीन भी उतनी ही ठीक थी। वहां की चिमनी काफी चौड़ी थी, साथ ही उस पर लोहे की जाली भी लगी हुई थी। अब ये निश्चित है कि जिस समय मेरी बहन के साथ ये हादसा हुआ तब वो बिल्कुल अकेली थी। इसके अलावा उसके शरीर पर किसी भी तरह के चोट के निशान भी नहीं थे। जहर के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? डॉक्टरों ने इसकी जांच कर ली थी, इसमें उन्हें कुछ नहीं मिला। तब तुम क्या सोचती हो कि इस लड़की की मौत कैसे हुई? मेरे अनुसार तो उसकी मौत का कारण सिर्फ डर और घबराहट ही है, पर वो कौन सी चीज है जिससे वो डरी इसका अंदाजा मैं नहीं लगा सकती। क्या वे बंजारे उन दिनों भी वहीं ठहरे हुए थे? हाँ, थोड़े बहुत तो वहां हमेशा ही रहते हैं। फीता, यानी वो छींटदार फीते का जो संकेत वो तुम्हें कर रही थी, तुम उससे क्या समझती हो? कभी कभी मुझे लगता है कि ये केवल कोई सनक की स्थिति होगी या कुछ लोगों के समूह के बारे में बात करती होगी, जो कि शायद इन बसे हुए बंजारों का भी हो सकता है। मैं नहीं जानती कि उनमें से कुछ लोग छींटदार रुमाल अपने सर पर बांधते हों, या शायद इस बारे में उसने कुछ कहा हो। एक असंतुष्ट व्यक्ति की तरह होम्स ने अपना सिर हिलाया। वो बोला, मामला काफी गंभीर है, प्लीज आप अपनी बात जारी रखिए। तब से अब तक 2 साल बीत चुके हैं और मेरा जीवन हाल तक इतना एकाकी कभी नहीं रहा। मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है जिसे मैं पिछले काफी सालों से जानती हूँ। उसने 1 महीने पहले ही शादी के लिए मेरा हाथ मांगा था। उसका नाम आर्मिटोज है और वो रीडिंग के पास के ही फ्रेंड वाटर में मिस्टर आर्मिटोज का दूसरा बेटा है। मेरे सौतेले पिता ने इस रिश्ते का कोई विरोध नहीं किया और हम बसंत के मौसम में शादी करने वाले हैं। 2 दिन पहले ही इमारत के पश्चिमी हिस्से में मरम्मत का काम शुरू हुआ था, जिसमें मेरे बेडरूम की दीवार पर टूट फूट हो रही थी, इसलिए मुझे उसी कमरे में जाना पड़ा। जिसमें मेरी बहन की मौत हुई थी, और मुझे उसी बिस्तर पर सोना पड़ा जिस पर वो सोई थी। आप मेरे डर का अंदाजा तो लगा सकते हैं ना। मैं पिछली रात को जाग गई और उसके उस भयानक अंत के बारे में सोचने लगी। तभी अचानक मैंने धीमी सी सीटी की आवाज सुनी, जो कि उसकी अपनी ही मौत का इशारा थी। मैं उछल कर उठी और लैम्प जलाया। तब मुझे कमरे में कुछ भी नहीं दिखा। मैं अब अपने बिस्तर पर भी जाने से कांपती हूं। खैर, मैं फिर भी तैयार हुई और जैसे ही दिन की रोशनी हुई मैं बाहर आई। मैंने क्राउन इन पर एक घोड़ा गाड़ी पकड़ी और फिर लेदर हेड आकर आपके पास मिलने चली आई, और ये सोचा कि शायद आपकी राय से कोई सहायता मिल जाए।
मेरे सहयोगी ने कहा, तुमने बहुत ही समझदारी का काम किया है, पर क्या तुमने मुझे अभी तक सब कुछ बता दिया है?
जी हाँ, सब कुछ।
आपने सब कुछ नहीं बताया मिस रॉयलॉट। आप अपने सौतेले पिता के बारे में क्या छिपा रही हैं?
हाँ, क्यों, क्या मतलब है आपका?
जवाब में होम्स ने उस आगंतुक के घुटने पर रखे उसके हाथ पर लटकती काली झालर को पीछे पलट दिया। उसकी सफेद कलाई पर 5 नीले निशान पड़े हुए थे, जिनमें 4 उंगलियों के और एक अंगूठे का निशान था। होम्स ने कहा, क्या वो तुम्हारे साथ क्रूर व्यवहार करता है? महिला के चेहरे का रंग ही गहरा हो गया और उसने अपनी कलाई ढक ली। वो बोली,
वो एक ताकतवर आदमी है और शायद उसे अपनी ताकत का अंदाजा नहीं है।
वहां एक लंबी चुप्पी छाई हुई थी। होम्स अपनी ठुड्डी को अपने हाथों में टिकाए अंगीठी की ओर ध्यान से देख रहा था। ये बड़ा गंभीर मामला है। इससे पहले कि मैं अपने काम की रूपरेखा तय करूं, मुझे अभी हजारों बातें जाननी हैं। फिर भी हमारे पास गंवाने के लिए एक पल भी नहीं है। यदि हम आज ही स्टॉक मोरॉन जाते हैं, तब क्या यह मुमकिन है कि बिना तुम्हारे सौतेले पिता की जानकारी के ही हम उन कमरों को देख सकें?
हाँ जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि उन्होंने आज ही किसी जरूरी काम से शहर से बाहर जाने के लिए कहा है। हो सकता है कि वे आज सारा दिन बाहर ही रहेंगे और वहां कोई रुकावट डालने वाला नहीं होगा। हमारे यहाँ एक घरेलू नौकरानी है जो कि बूढ़ी और बेवकूफ है। मैं उसे आसानी से हटा सकती हूँ।
वंडरफुल वॉटसन, हमारे साथ चलने में तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं?
नहीं, बिल्कुल नहीं।
तब हम साथ ही साथ आएंगे। अब तुम कहाँ जा रही हो?
मैं एक दो काम निपटा लेना चाहूंगी क्योंकि मैं शहर में ही हूँ, पर मैं 12 बजे वाली गाड़ी से वापस चली जाऊंगी ताकि आपके आने के समय मैं वहां मौजूद रह सकूं।
तुम वहां दोपहर तक हमारी प्रतीक्षा कर सकती हो। मुझे भी यहाँ कुछ छोटे मोटे काम हैं। क्या तुम रुकोगी नाश्ते के लिए?
नहीं नहीं, अब मुझे चलना चाहिए। मेरा मन पहले से ही काफी हल्का हो चुका है क्योंकि मैंने आपको अपनी समस्या बता दी। मैं दोपहर में आपका इंतजार करूंगी।
उस महिला ने अपने चेहरे पर मोटा सा नकाब डाल लिया और तेजी से कमरे से बाहर निकल गई। शर्लॉक होम्स ने अपनी कुर्सी की पुश्त पर अपनी पीठ टिकाते हुए पूछा, वॉटसन, तुम इस बारे में क्या सोचते हो? ये मामला तो काफी गंभीर और खतरनाक लगता है। अगर वो महिला सही कह रही थी कि उस कमरे की दीवारें और जमीन पक्की हैं और दरवाजे खिड़कियों और चिमनियों से कोई घुस नहीं सकता, तो इसका मतलब है कि उसकी बहन के मौत के वक्त वो बिल्कुल अकेली थी। तब उस रात वाली सीटियों का क्या मतलब हो सकता है और उस मरने वाली महिला के उन खास शब्दों का क्या अर्थ हो सकता है? मैं नहीं सोच पा रहा हूं। उस रात को बजने वाली सीटियों और बंजारों के समूह की मौजूदगी, जिनका कि उस बुजुर्ग डॉक्टर के साथ नजदीक रिश्ता भी है, जब इन दोनों विचारों को साथ मिला दें, तब इस तथ्य पर विश्वास होने लगता है कि डॉक्टर की रुचि उसकी सौतेली बेटी की शादी न होने देने में थी। उस फीते की ओर मरने वाले का इशारा और वो आवाज मेटल की उस झनझनाहट की हो सकती है जो सुरक्षा के लिए लगी उन छड़ों के गिरने की वजह से हुई हो। मेरे हिसाब से इस आधार पर इस दिशा में सोचने से यह रहस्य खुल सकता है वॉटसन। तब उन बंजारों का क्या होगा? मुझे इसका अंदाजा नहीं है। कई जगहों पर मैं इन विचारों से असहमत हूं। हाँ, मैं भी, और इसीलिए आज हम खास तौर पर स्टॉक मोरॉन जा रहे हैं। मैं देखना चाहता हूं कि क्या हमारे प्रतिद्वंदी अभी तक खतरनाक हैं या हम उनको जान समझ चुके हैं। आगे देखें शैतान के नाम पर क्या होता है। मेरे साथी के ये शब्द अभी मुंह से निकले ही थे कि एक धक्के के साथ अचानक हमारा दरवाजा खुला और सामने एक बड़े डील डॉल वाला आदमी दिखा। उसका पहनावा खेतों में काम करने वालों और पेशेवरों के पहनावों से मिला जुला था। उसके सिर पर काली ऊंची सी हैट थी, उसका कोट लंबा सा था और उसने गार्टर्स पहने हुए थे और हाथ में एक चाबुक लहरा रहा था। वो इतना लंबा था कि दरवाजे की ऊंची चौखट को उसका हैट छू रहा था और उसकी चौड़ाई ने दरवाजे की चौड़ाई को करीब करीब ढक लिया था। उसका बड़ा सा चेहरा जिस पर हजारों झुर्रियां पड़ी हुई थी और जो सूरज के ताप से जलकर पीला हो चुका था, उस आदमी के चेहरे पर दुष्टता के चिन्ह थे और वो बारी बारी से हम दोनों की तरफ अपनी गहरी हरी हरी आंखों से देख रहा था। उसकी ऊंची पतली और बिना मांस वाली नाक जंगली शिकारी चिड़िया की तरह लग रही थी। उस आगंतुक ने पूछा,
तुम में से होम्स कौन है?
मेरे सहयोगी ने शांति से कहा,
मेरा नाम होम्स है सर,
मैं स्टोक मोरॉन का ग्रिम्सबाय रॉयलॉट हूं।
होम्स ने सौम्यता से कहा, ओह डॉक्टर प्लीज सिट,
मैं यहां बैठने नहीं आया हूं। क्या मेरी सौतेली बेटी यहां आई थी? मैं उसका पता लगाने के लिए उसका पीछा करते हुए आया हूं। क्या कह रही थी तुमसे वो?
होम्स ने कहा, इस साल मौसम के लिहाज से थोड़ी ठंड ज्यादा है।
वो बुजुर्ग आदमी गुस्से के मारे जोर से चीखा, क्या कह रही थी तुमसे वो?
मेरे साथी ने शांति से अपनी बात जारी रखी, मैंने सुना है कि इस बार केसर काफी होगा। हमारे आगंतुक ने कहा,
तुम मुझे बरगला रहे हो ना?
इतना कहकर वो एक कदम आगे बढ़ा और अपने हाथ से उस चाबुक को लहराते हुए बोला,
बदमाश, मैं तुमको जानता हूं, मैं पहले भी तुम्हारा नाम सुन चुका हूं, तुम होम्स हो जो हर काम में दखल अंदाजी करते हो।
मेरा सहयोगी मुस्कुराया,
होम्स? दूसरों की चीजों में मजा लेने वाला होम्स, राइट?
उसके चेहरे पर मुस्कान और फैल गई।
होम्स, स्टॉकलैंड यार्ड का भूतपूर्व अधिकारी, इज दैट शिव?
होम्स ने अपना मुंह दबाकर हंसते हुए कहा, तुम्हारी बातचीत बहुत मजेदार है, अब जब तुम बाहर जाना तो दरवाजा जरा बंद कर देना, ये यहाँ का कायदा है।
जब मैं अपनी बात कह लूंगा तभी जाऊंगा। तुम मेरे मामले में दखलअंदाजी करने की हिम्मत मत करो। मैं जानता हूं कि मिस स्टोनर यहां क्यों आई थी, मैंने इसका पता लगा लिया है। मैं कुछ भी कर सकता हूं, मैं बहुत ही खतरनाक आदमी हूं जिसके साथ तुम्हें दुश्मनी भारी पड़ेगी। ये देखो।
वो तेजी से आगे बढ़ा और अंगीठी कुरेदने वाली लोहे की छड़ को लपक कर उठा लिया और फिर उसे अपने भूरे भूरे बड़े बड़े हाथों से घुमा घुमा कर गोल मोल कर दिया।
देखो, मुझसे दूर रहना,
गुर्राते हुए वो बोला और उस लोहे की छड़ को कमरे की अंगीठी की ओर फेंक दिया। ये आदमी काफी मिलनसार मालूम पड़ता है, होम्स ने हंसते हुए कहा।
मैं बहुत मोटा तो नहीं हूं, पर अगर वो मुझसे कहता तो मैं उसे अपनी कलाई की पकड़ भी दिखा देता, जो कि उसकी कलाई की पकड़ से कमजोर नहीं है।
ऐसा कहकर होम्स ने लोहे की उस छड़ को थोड़े से ही प्रयास से फिर से सीधा कर दिया।
मुझे लगता है उसने मुझे चकरा देने के लिए मेरे साथ बदसुलूकी की है। ये घटना हमारी छानबीन को बल दे रही है। हालांकि मुझे विश्वास है कि हमारी दोस्त की उस थोड़ी सी लापरवाही से इस जंगली ने उसे ढूंढ निकाला है, पर उससे उसे परेशानी नहीं होगी। और अब वॉटसन, हमें नाश्ते का ऑर्डर कर देना चाहिए, फिर हमें डॉक्टर की ओर चलना है ताकि इस मामले में कुछ सहायता मिल सके। शेरलॉक होम्स जब घूम कर लौटा तब तकरीबन 1 बज रहा था। उसके हाथ में नीले रंग के कागज की एक शीट थी जिस पर कुछ लिखा हुआ था और कुछ चित्र बने थे। मैंने उस मृतक महिला की वसीयत देखी है, इसका ठीक ठीक मतलब समझने के लिए मैं आज मौजूदा कीमत के अनुसार इसका हिसाब लगाना चाहता हूँ। उसकी पत्नी की मौत के समय उसकी कुल आमदनी थी 1100 पाउंड, शायद उससे कुछ कम ही थी। खेती में कमी आने पर भी ये 750 पाउंड से कम नहीं होगी। अब अगर उनकी शादी की बात हो जाती है तब हर लड़की 250 पाउंड की आय का दावा कर सकती है। अब यह स्पष्ट है कि यदि दोनों लड़कियों की शादी हो जाती है तब यह पैसा बहुत ही कम रह जाता है,
मतलब समझ लो एकदम ना के बराबर। मेरा सुबह का काम बेकार नहीं गया, क्योंकि इससे ये पता चल जाता है कि ऐसे काम के बीच में रुकावट डालना उसका एक उद्देश्य हो सकता है। वॉटसन, अब समय गंवाना खतरनाक हो सकता है, खास तौर पर तब जबकि वो बुजुर्ग ये जान चुका है कि हम उसके मामले में इंटरेस्ट ले रहे हैं। इसलिए अगर तुम तैयार हो तो हमें गाड़ी बुला लेनी चाहिए और वाटरलू की ओर चलना चाहिए।
अपनी रिवॉल्वर अपनी जेब में रख लेना, तो मुझ पर बड़ा एहसान होगा।
क्योंकि जो आदमी छड़ को मोड़ कर गांठ लगा सकता है उसके साथ बहस करने के लिए इसका इस्तेमाल एक कारगर तर्क साबित होगा।
हमें एक टूथब्रश भी रख लेना चाहिए।
वाटरलू से लेदर हेड के लिए ट्रेन पकड़ने में हम भाग्यशाली रहे और वहां पहुंचने पर स्टेशन से हमने भाड़े पर एक घोड़ा गाड़ी ली और उन संकरी गलियों से होकर हम 4 या 5 मील तक चले। दिन पूरी तरह साफ था और सूरज चमक रहा था। आकाश में बादल रुई की तरह उड़ रहे थे। सड़क किनारे के पेड़ और झाड़ियों में हरी हरी कोंपलें आ गई थीं और हवा में एक आनंददायक खुशबू और धरती में एक नमी मिली हुई थी। मेरे लिए बसंत के इस मधुर आगमन और हम जिस भयानक काम की छानबीन के लिए नियुक्त किए गए थे उनके बीच में एक अजीब सी विषमता थी। मेरा सहयोगी उस घोड़ा गाड़ी के सामने की तरफ बैठा था। उसने अपनी बाहें मोड़ रखी थीं और उसका हैट उसकी आंखों पर झुका था। वो अपनी ठुड्डी को छाती पर झुकाए किसी गंभीर सोच में डूबा हुआ था। अचानक उसने मेरे कंधे को थपथपाया और एक चारागाह की तरफ इशारा करते हुए कहा, वहां देखो। उस ढलान पर घने पेड़ों वाला एक मैदान दूर दूर तक फैला था जिससे वो मैदान और भी घना मालूम पड़ता था। पेड़ों की शाखाओं के बीच से उस पुरानी इमारत की स्लेटी रंग की छत दिखाई दे रही थी। होम्स ने कहा, स्टॉकमोरॉन। कोचवान ने जवाब दिया, जी हाँ सर, वो डॉक्टर ग्रिम्सबॉय रॉलॉट का घर है। होम्स ने पूछा, वहां पास में और कोई इमारत है क्या? हमें वहीं जाना है। कोचवान ने दूर बाईं तरफ कुछ मकानों की ओर इशारा किया, वहां पर एक गांव है, आप पर यदि आप उस मकान में जाना चाहते हैं तो इधर से उस छोटी सीढ़ी पे चढ़कर फुटपाथ से जा सकते हैं, वो वहीं पर वो औरत टहल रही है। होम्स ने पलके झपकाते हुए कहा, मेरे अनुमान से वो मिस टोनर ही हैं, और हाँ जैसा तुमने बताया हम वैसा ही करेंगे। थैंक यू। हम घोड़ा गाड़ी से उतर गए और उसे उसका भाड़ा दे दिया। भाड़ा लेकर वो वापस लेदरहेड की ओर चल दिया। जैसे ही हम छोटी सी सीढ़ी पर चढ़े होम्स ने कहा, मुझे लगता है कि वो आदमी सोच रहा होगा कि हम कोई कारीगर हैं या फिर यहाँ किसी काम से आए हैं। तभी हमारी बातचीत बंद हो गई। गुड आफ्टरनून मिस टोनर, आप देख रही हैं ना हम जबान के बहुत पक्के हैं। हमारा मुवक्किल सुबह से ही हमसे मिलने के लिए परेशान था। उसकी खुशी उसके चेहरे पर झलक रही थी। उसने गर्म जोशी से हमसे हाथ मिलाया और कहा, मैं आपका बहुत उत्सुकता से इंतजार कर रही थी। सब कुछ बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर रॉयलॉट शहर गए हैं और उनके शाम से पहले आने की उम्मीद कम ही है। होम्स ने कहा, हम डॉक्टर रॉयलॉट से मुलाकात का मजा ले चुके हैं। और फिर उसने कम से कम शब्दों में उसे वो सारा किस्सा सुना दिया। जैसे ही मिस टोनर ने यह सुना उसका चेहरा सफेद पड़ गया। हे भगवान, वो चीखी, इसका मतलब उसने मेरा पीछा किया था। लगता तो ऐसा ही है। मैं नहीं जानती थी कि ये कितना धूर्त है। जब वो वापस आएगा तब क्या करेगा? वो अपने आप को सुरक्षित करेगा क्योंकि वो देखेगा कि इस मामले में कोई उससे भी अधिक चालाक है। आप आज की रात अपने आप को बस उससे बचाकर कमरे में बंद रखिए। अगर वो हिंसक हो जाएगा तब हम आपको आपकी मौसी के घर हारो में ले चलेंगे। अब इस समय हमें समय का इस्तेमाल करना चाहिए, इसीलिए उन कमरों की तरफ हमें ले चलिए जिनकी हमें छानबीन करनी है। ये इमारत स्लेटी रंग की थी और इसके पत्थरों पर फूलों के उभार बने हुए थे। इसका बीच वाला भाग ऊपर की ओर उठा हुआ था और दोनों तरफ के हिस्से केकड़े के पंजों की तरह बाहर निकले थे। इन हिस्सों में से एक हिस्से की खिड़कियां टूट गई थीं और उनमें लकड़ी के फट्टे जड़े हुए थे। उनकी बीच की छत भी थोड़ी सी नीचे गिर गई थी जिससे ये खंडहर सा मालूम होता था। इमारत के बीच वाले भाग की मरम्मत थोड़े बेहतर ढंग से हुई थी, लेकिन दाहिनी ओर वाला हिस्सा इसकी तुलना में काफी अधिक आधुनिक था और खिड़कियों के छाजन और चिमनियों से निकलते धुएं से हमें पता चला कि इमारत के इसी हिस्से में लोग रहते हैं। दीवार के आखिर में कुछ पॉइंट लगे हुए थे और दीवार पर पत्थरों में कुछ टूट फूट का काम भी किया हुआ था, लेकिन हमारे पहुंचने के समय वहां पर कोई भी नहीं था। होम्स ने उस बिना कटे छटे लॉन में ऊपर नीचे होकर चलते हुए खिड़कियों के बाहर काफी ध्यान से देखा। ऐसा लगता है यही वो कमरा है जिसमें तुम सोती हो और बीच वाला कमरा तुम्हारी बहन का है और वो तीसरा कमरा डॉक्टर रॉयलॉट का है। आपने बिल्कुल ठीक कहा, पर अब मैं बीच वाले कमरे में सोती हूँ। मेरे हिसाब से शायद रद्दोबदल का कुछ काम हो रहा है। हालांकि दीवार के आखिरी हिस्से में किसी मरम्मत की बहुत जरूरत तो नहीं दिखती। ऐसा लगता है कि मुझे मेरे
कमरे से हटाने के लिए ये सब किया गया है।
इस बात से एक राय जरूर बनती है। यहाँ संकरे हिस्से से दूसरी तरफ एक गलियारा है जिसमें तीनों कमरे के दरवाजे खुलते हैं और उनमें खिड़कियां भी हैं।
हाँ, पर वे तो बहुत छोटी हैं। किसी के घुसने के लिहाज से तो बहुत ही छोटी हैं।
तुम दोनों बहनें जिस तरह अपना कमरा रात को बंद कर लेती थीं, तब इनमें किसी का भी बाहर से घुस पाना नामुमकिन था। क्या तुम अपने कमरे में जाओगी और शटर को भीतर से बंद करके दिखाओगी? मिस स्टोनर ने वैसा ही किया और होम्स ने ध्यानपूर्वक उन खिड़कियों की जांच करने के बाद उनके शटर को खोलने की हर संभव कोशिश की, पर उसे सफलता नहीं मिली। इनमें किसी भी प्रकार की झिर्री तक नहीं थी जिनमें से चाकू डालकर या बीच वाले डंडे को ऊपर उठाया जा सके। फिर होम्स ने अपने लेंस से उनके कब्जों को भी देखा, जो कि ठोस लोहे के बने हुए थे। वे बिल्कुल अच्छी कारीगरी के साथ बनाए गए थे। उसने कुछ परेशानी से अपनी ठुड्डी को खुजाया और कहा, मेरे अनुसार जब शटर बंद है तब इनमें से कोई भी अंदर बाहर नहीं आ सकता। देखते हैं कि भीतर से इस मामले में कोई रोशनी पड़ती है क्या। कोने में बना हुआ एक छोटा सा दरवाजा सफेद पुते गलियारे की तरफ ले जाता था, जहां उन तीनों बेडरूम्स के दरवाजे खुलते थे। होम्स ने तीसरे कमरे को देखने से मना कर दिया और तुरंत उस दूसरे वाले कमरे में घुसा जिसमें मिस स्टोनर अब सोती हैं, और इसी कमरे में ही उनकी बहन अपने दुर्भाग्य को प्राप्त हुई थी। पुराने ग्रामीण घरों की तरह ये एक छोटा सा घरेलू कमरा था जिसकी छत नीची थी और दीवार में आतिशदान की जगह बनी हुई थी। कमरे के कोने में दराजों वाली एक भूरे रंग की अलमारी और एक सफेद पतला सा बेड था। खिड़की के बाईं तरफ एक ड्रेसिंग टेबल था। इस सामान के साथ साथ इसमें लकड़ी के काम वाली दो छोटी कुर्सियां और बीच में एक चौकोर कालीन भी बिछा हुआ था। कमरे की दीवारों पर चारों तरफ भूरे रंग के लकड़ी के फट्टे लगे थे। उनकी बलूत की लकड़ी को कीड़े खा चुके थे और वो इतने पुराने और बदरंग थे कि इनसे पता लग रहा था कि वे वहां उस पुरानी इमारत की शुरुआत से ही रहे होंगे। होम्स ने कोने से कुर्सी खींची और उस पर आराम से बैठ गया। उसकी आंखें उस कमरे को चारों तरफ बार बार घूम घूम कर देख रही थी। वो हर चीज को बहुत ही ध्यान से देख रहा था। उसने उस घंटी की लटकती हुई रस्सी जिसका फुंदना तकिए के पास था देखकर पूछा, इस घंटी से किसे पुकारा जाता है? ये हाउसकीपर के कमरे तक जाती है। कमरे की और चीजों के मुकाबले ये नहीं मालूम पड़ती है। हाँ, ये सिर्फ 2 साल से ही लगाई है। मेरे अनुमान से तुम्हारी बहन ने इसके लिए ही कहा होगा। नहीं, मैंने उसे इसका इस्तेमाल करते कभी नहीं सुना। हमें जो चाहिए होता था हम खुद ही ले लिया करते थे। इसका मतलब इतनी सुंदर घंटी का यहाँ लटकना बेकार था। मुझे माफ करना, पर मैं इस कमरे की जमीन को देखना चाहूंगा। उसने अपना लेंस निकाला और इसे हाथ में पकड़कर अपने चेहरे के पास ले गया और फिर तेजी से आगे पीछे करते हुए फट्टों में पड़ी दरारों को ध्यान से देखने लगा। यही काम उसने कमरे के चारों तरफ लगे लकड़ी के पैनल्स पर भी किया। अंत में वो बिस्तर के पास आया और कुछ देर तक इसे घूरता रहा, फिर दीवार पर ऊपर नीचे अपनी नजरें दौड़ाई। उसने घंटी की रस्सी को अपने हाथों में पकड़ा और फिर इसे झटके के साथ खींचा। वो बोला, अरे ये तो दिखावटी है।
क्या ये बजेगी नहीं?
नहीं, ये तो तार से भी नहीं बंधी हुई है। बड़ी मजेदार बात है, तुम देख सकती हो कि ये वहां से उस थोड़े से खुले वाले रोशनदान के छोटे से हुक से बंधी हुई है।
बहुत अजीब बात है, मैंने पहले कभी इस पर ध्यान नहीं दिया।
होम्स बुदबुदाते हुए बोला, अजीब बात है, इस कमरे में एक दो चीजें बड़ी अजीब हैं। जैसे वो बिल्डर कितना बेवकूफ है कि उसने कमरे का रोशनदान दूसरे कमरे को खोल दिया है। इस समस्या के लिए वो बाहर से हवा ले सकता था। महिला ने कहा, ये काफी नया बना हुआ है। होम्स ने जवाब दिया, ठीक यही काम घंटी की रस्सी के साथ किया गया है।
हाँ, काफी छोटे मोटे बदलाव तो हो चुके हैं।
ये लोग काफी अजीब मालूम पड़ते हैं, दिखावटी रस्सी, रोशनदान जिसमें हवा नहीं आती। मिस टोनर, आपकी अनुमति हो तो हम उस कमरे को भी अंदर से देख सकते हैं। डॉक्टर ग्रिम्स बॉय रॉयलार्ड का कमरा उसकी सौतेली बेटियों के कमरों की तुलना में काफी बड़ा था, पर उसकी सजावट साधारण ही थी। कमरे में एक बेड और लकड़ी की किताबों की एक अलमारी थी जिसमें किताबें भरी हुई थी। ज्यादातर वे किताबें तकनीकी विषयों की थी। बिस्तर के बगल में बाहों वाली एक कुर्सी, एक गोल टेबल और कोने में एक बड़ी सी लोहे की तिजोरी थी। होम्स उन सारे सामानों के पास गया और बड़े ही ध्यान से देखा। होम्स ने तिजोरी को थपथपाते हुए पूछा, ये क्या है?
मेरे सौतेले पिता के काम के कागज हैं।
इसका मतलब तुम इसे अंदर से देख चुकी हो?
सिर्फ एक बार, कई साल पहले। मुझे याद है कि ये कागजों से भरी हुई थी।
यहां कोई बिल्ली तो नहीं?
नहीं, ये तो बड़ी अजीब सी बात है।
यहां देखो। उसने दूध की एक छोटी सी प्लेट उठाई जो कि उसके ऊपर ही रखी हुई थी।
नहीं, हमारे पास तो कोई बिल्ली नहीं है, पर यहाँ एक चीता और एक लंगूर जरूर है।
ओह हाँ हाँ, चीता भी तो एक बड़ी बिल्ली ही है।
फिर भी एक प्लेट दूध उसको संतुष्ट नहीं कर पाएगा। यही एक बात है जिसके लिए मैं निश्चित होना चाहता हूँ।
होम्स उस लकड़ी की कुर्सी के सामने पालथी मारकर बैठ गया। वो बड़े ध्यान से उसे देखने लगा। अपने लेंस को जेब में रखकर उठते हुए बोला, थैंक यू, यहाँ बहुत ही रोचक चीजें हैं। उसकी निगाह बिस्तर के कोने पर लटके हुए कुत्ते के पट्टे पर पड़ी। पट्टा इस ढंग से लिपटा हुआ था जैसे इसका चाबुक से फंदा बनाया गया। वॉटसन, तुम्हें क्या लगता है?
ये तो एक साधारण सा पट्टा है, पर मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये इस तरह क्यों बंधा है।
ये बहुत सामान्य सा नहीं है। ये दुनिया बहुत बुरी है और जब एक चालाक आदमी अपना दिमाग अपराध में लगा देता है तब ये और भी बुरी हो जाती है। मिस टोनर, मेरे ख्याल से मैंने अब काफी कुछ देख लिया है। आइए अब बाहर लॉन की तरफ चलें।
मैंने अपने साथी का चेहरा इतना गंभीर पहले कभी नहीं देखा था और जब हम उस छानबीन से वापस लौटे तब उसकी भौहों पर भी एक तनाव था। हमने उस लॉन में कई बार चहलकदमी की पर जब तक वो स्वयं ही अपने विचारों से बाहर नहीं निकला मैंने और मिस टोनर ने उसे छेड़ना उचित नहीं समझा।
उसने कहा, मिस टोनर, ये बहुत ही जरूरी है कि आप हर हालत में मेरी राय के अनुसार ही काम करें।
जी जरूर, मैं ऐसा ही करूंगी।
ये मामला काफी गंभीर है और आपकी जिंदगी आपके काम करने के ढंग पर ही निर्भर करेगी।
मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि मेरी जान अब आपके हाथों में है।
ठीक है, सबसे पहली बात यह है कि मैं और मेरा साथी रात को आपके कमरे में ही सोएंगे। मैंने और मिस टोनर ने एक दूसरे की तरफ अचंभे से देखा। हाँ हाँ, ऐसा ही है। आइए मैं आपको बता दूं, मेरे ख्याल से गांव में ठहरने के लिए कोई जगह तो होगी ही।
हाँ, वहाँ ग्राउंड में।
बहुत अच्छी बात है, वहां से तुम्हारी खिड़कियां तो दिखाई पड़ती होंगी ही।
बिल्कुल।
जब तुम्हारा सौतेला पिता वापस लौटे तब तुम सिर में दर्द का बहाना करके अपने कमरे में ही रहना। जब वो सोने चला जाए तब तुम अपनी खिड़की के पल्ले खोल देना और उसकी कुंडी हटा देना। हमारे इशारे के लिए तुम वहीं पर एक लैंप जला कर रख देना। साथ ही तुम दूसरे कमरे से अपने काम की वे सारी चीजें निकाल लेना जिनके साथ तुम्हें दूसरे कमरे में रहना है। मेरा विश्वास है कि मरम्मत का काम चलने के बावजूद तुम उस कमरे में एक रात आराम से रह लोगी।
हाँ, बहुत आसानी से।
बाकी तुम हम पर छोड़ दो, हम तुम्हारे कमरे में ही रात गुजारेंगे और उस शोर की वजह भी जानेंगे जो तुम्हें परेशान कर रहा है। मेरे साथी की बाहों पर अपना हाथ रखते हुए मिस टोनर ने कहा,
मिस्टर होम्स, ऐसा लगता है आपने अपना मन पक्का कर लिया है।
शायद ऐसा ही है।
तब कृपा करके मुझे मेरी बहन की मौत का कारण भी बता दीजिए।
ये सब बताने से पहले मैं इसका स्पष्ट सबूत आपके सामने रखना चाहूंगा।
हाँ, पर आप कम से कम इतना तो मुझे बता ही सकते हैं कि क्या मेरा सोचना सही है कि उसकी मौत अचानक डर के कारण हुई थी?
नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। मेरे ख्याल से इसकी कोई और वजह है और मिस टोनर, अब हमें चलना चाहिए क्योंकि यदि डॉक्टर रॉयलॉट वापस आ गए और उन्होंने हमें देख लिया तब हमारी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। सुनो, तुम बहादुरी से रहना। अगर तुम मेरे बताए रास्ते पर चलोगी तो निश्चिंत रहो कि हम तुम्हें डराने वाले खतरे से दूर रखेंगे। क्राउन के उस छोटे से होटल में होम्स और मेरे लिए एक बेडरूम था तथा बैठने वाले कमरे का इंतजाम करना कोई मुश्किल काम नहीं था। हमारा कमरा पहली मंजिल पर था। इसकी खिड़की से हम आने जाने वाले फाटक और स्टॉक मोरॉन के रिहायशी हिस्से को भी देख सकते थे। शाम के धुंधलके में हमने देखा कि डॉक्टर ग्रिम्सबी रॉय लॉट एक घोड़ा गाड़ी से लौटा जिसे एक लड़का चला रहा था और उसकी विशाल काया उसके पीछे बैठी थी। उस लड़के को बड़े से लोहे के फाटक को खोलने में थोड़ी परेशानी हो रही थी। तभी हमने डॉक्टर की गरजती आवाज सुनी और देखा कि वो उस लड़के को गुस्से में मुक्का दिखा रहा था। घोड़ा गाड़ी अंदर चली गई और कुछ ही पलों के बाद हमने देखा कि पेड़ों के झुरमुट से छन कर किसी एक बैठक कक्ष से लैंप की रोशनी बाहर आ रही थी। जब हम उस गहराते अंधेरे में साथ साथ बैठे थे तब होम्स ने कहा, वॉटसन आज की रात तुम्हें अपने साथ लेकर चलने में मुझे थोड़ी हिचक हो रही है। वहां किसी खतरे की संभावना लग रही है। क्या मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर पाऊंगा क्या? वैसे तुम्हारी मौजूदगी कारगर हो सकती है, तब तो मैं जरूर चलूंगा। थैंक यू मेरे दोस्त, तुमने खतरे की बात कही है होम्स। तुमने जरूर उस कमरे में कुछ देखा है जो कि मुझे नहीं दिखाई दिया।
नहीं,
पर मुझे लगता है कि मैंने थोड़ा अधिक निष्कर्ष निकाल लिया है वॉटसन। मेरे अनुमान से तुमने भी वो सब कुछ देखा है जो मैंने देखा है। वेल, मैंने उस घंटी और रस्सी से अधिक अजीब वहां कुछ भी नहीं देखा। और इसका क्या मतलब है? मैं सिर्फ इसकी कल्पना ही कर सकता हूं। तुमने उस रोशनदान को भी देखा होगा वॉटसन?
हाँ,
पर मुझे ऐसा नहीं लगता कि दो कमरों के बीच एक छोटा रोशनदान कुछ अजीब सा है। वो इतना छोटा है कि एक चूहा भी मुश्किल से उससे निकल पाएगा।
मैं जानता था,
मैं हमारे स्टॉक मोरॉन आने के पहले ही जानता था कि हमें वहां रोशनदान जरूर मिलेगा
होम्स।
हाँ हाँ, मुझे पता था। तुम्हें उस महिला की बात याद होगी जिसमें उसने कहा था कि उसकी बहन को डॉक्टर रायलॉट के सिगार की महक आती थी। इससे पता चलता है कि दोनों कमरों के बीच कोई संबंध जरूर है। ये छोटा भी हो सकता है, और यदि बड़ा होता तो मौत के बाद भी कोरोनर की टिप्पणी में उसका उल्लेख अवश्य होता। तो इसके होने से क्या नुकसान है?
हाँ,
पर इनमें एक ही समय पर होने का एक विचित्र सा संबंध है, जैसे रोशनदान का बनाया जाना, रस्सी का लटकाना और एक महिला जो कि बिस्तर पर सोई है उसका मरना। क्या ये तुम्हें कुछ सोचने पर मजबूर नहीं करता?
होम्स, मैं अभी भी इसमें कोई संबंध नहीं देख पा रहा हूं।
क्या तुमको उसके बिस्तर पर कुछ खास नजर नहीं आया?
नहीं।
अरे, वो बिस्तर जमीन में जड़ा हुआ था। क्या तुमने पहले कभी इस तरह जमीन पे जड़ा हुआ बेड देखा है?
मैं कह नहीं सकता।
और वो औरत अपना बेड सरका नहीं सकती थी।
वो बेड उस रोशनदान और रस्सी के ठीक सामने की जगह पर ही रहना होगा।
और हम ये भी कह सकते हैं कि ये रस्सी घंटी बजाने के लिए नहीं थी।
मैंने जोर से कहा, होम्स, ऐसा लग रहा है कि जो कुछ भी तुम कह रहे हो
मैं उसे वाकई कुछ कुछ समझ पा रहा हूं। हम सचमुच किसी भयानक अपराध को रोकने के लिए ठीक समय पर यहां आ पहुंचे हैं।
अत्यंत भयानक,
वेरी डेंजरस। जब एक डॉक्टर ऐसा गलत काम करता है तब वो पहला अपराधी होता है। उसके पास ताकत भी है और जानकारी भी। ये आदमी गहराई से चोट करता है, पर वॉटसन हमें भी गहराई से ही चोट करनी होगी। रात खत्म होने से पहले हमारे पास बहुत सी भयानक बातें होंगी। चलो कुछ घंटे तो एटलीस्ट खुश रहने के लिए या मन को बहलाने के लिए पाइप पी लें। तकरीबन 9 बजे पेड़ों के बीच से दिखने वाली रोशनी बुझ गई और उस इमारत की तरफ पूरी तरह अंधेरा छा गया था। धीमे धीमे 2 घंटे बीत गए और तभी अचानक 11 बजने के साथ ही हमारे ठीक सामने एक तेज रोशनी दिखाई पड़ी। अपने पैरों पर उछलते हुए होम्स ने कहा, वो इशारा हमारे लिए है और ये बीच वाली खिड़की से आ रहा है। जब हम वहां से निकल रहे थे तभी होम्स ने होटल के मालिक से कहा, हम किसी परिचित से मिलने जा रहे हैं और रात में हम वहीं रुक भी सकते हैं। अगले ही पल हम बाहर अंधेरी सड़क पर आ गए। हमारे चेहरे पर तीखी ठंडी हवा लग रही थी। सामने एक पीली रोशनी धुंधली मंजिल की तरफ ले जाने के लिए हमें रास्ता दिखा रही थी। हमें उस मैदान में घुसने में थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा क्योंकि उस पुरानी चार दीवारी में जगह जगह बिना मरम्मत वाली दरारें पड़ी हुई थी। पेड़ों के बीच से अपनी जगह बनाते हुए हम लॉन तक पहुंचे और इसे पार भी कर लिया।
जैसे ही हम खिड़की से भीतर होकर घुसने ही वाले थे कि चंपा की झाड़ियों में से एक बच्चे की तरह कूद कर कोई निकला और घास में लड़खड़ाता हुआ सा अंधेरे में भाग गया। मैं फुसफुसाया, ओह गॉड, तुमने देखा क्या? होम्स भी मेरी ही तरह एक पल के लिए चौंक पड़ा था। उसने अपने हाथों से मेरी कलाई को जकड़ रखा था, फिर उसकी धीमी सी हंसी मेरे कानों में पड़ी। वो फुसफुसा कर बोला, ये भी इसी परिवार का सदस्य है, ये वही लंगूर है। मैं डॉक्टर के उन अजीब से पालतू जानवरों के बारे में तो भूल ही गया था। इनमें से एक चीता भी शामिल था जो कि शायद किसी भी पल हमारे कंधों पर चढ़ सकता था। होम्स की बातों को मानते हुए मैंने अपने जूते उतारे और कमरे के भीतर पहुंचकर काफी हल्का महसूस किया। मेरे साथी ने बिना आवाज किए ही खिड़कियों के दरवाजे बंद कर दिए और लैंप उठाकर मेज पर रख दिया। उसने कमरे में चारों तरफ नजर दौड़ाई। वहां सब कुछ वैसा ही था जैसा कि हमने दिन के समय देखा था। फिर वो धीरे से मेरी तरफ खिसका और अपने हाथों को अपने मुंह के चारों तरफ पाइप की तरह गोल बनाकर मेरे कानों में फुसफुसाया, थोड़ी सी भी आवाज हमारी योजना पर पानी फेर देगी। मैंने सहमति से सिर हिलाया ताकि वो समझ जाए कि मैंने सुन लिया है। वो हमें रोशनदान से देख सकता है, इसलिए हमें बिना रोशनी के ही बैठना होगा। मैंने फिर सिर हिलाया, देखो सो मत जाना, तुम्हारी जिंदगी इसी पर निर्भर है। अपनी पिस्तौल तैयार रखना, हमें इसकी जरूरत पड़ सकती है। मैं बिस्तर के किनारे बैठा हूं, तुम कुर्सी पर बैठो। मैंने अपना रिवॉल्वर बाहर निकाल लिया और इसे मेज के ऊपर एक किनारे पर रख दिया। होम्स अपने साथ एक लंबी छड़ी लेकर आया था, इसे उसने बिस्तर पर अपनी बगल में ही रख दिया था। इसी से सटाकर उसने माचिस की डिबिया रख दी और अधजली मोमबत्ती को भी रख लिया और फिर लैंप भी बुझा दिया। अब हम बिल्कुल ही अंधेरे में बैठे थे। मैं उस भयानक रतजगे को क्या कभी भूल पाऊंगा? मुझे कुछ भी सुनाई नहीं पड़ रहा था, यहां तक कि सांसों की आवाजें भी नहीं। और मैं ये भी जानता था कि मुझसे कुछ ही फीट की दूरी पर आंखें खोले हुए मेरा साथी भी मेरी ही हालत में बैठा है। दरवाजे की झिर्रियों से बहुत ही कम रोशनी दिख रही थी और हम चुपचाप अंधेरे में बैठे इंतजार कर रहे थे। बाहर किसी जंगली चिड़िया की कभी कभी तेज आवाज आती थी और एक बार तो हमारी खिड़की के पास एक बड़ी बिल्ली की तरह किसी के गुर्राने की आवाज भी आई, जिससे हमें पता लगता था कि वो चीता वहां आजादी से घूम रहा है। बहुत दूर से आती उन चर्च की घड़ी के घंटों की आवाजें हमें हर चौथाई घंटे पर सुनाई देती थी। वे चौथाई घंटे कितने लंबे मालूम पड़ते थे, 12, 1, 2 और 3 बज गए, पर अभी भी हम शांत बैठे हुए इंतजार कर रहे थे कि कुछ भी हो सकता है। अचानक रोशनदान की तरफ पल भर के लिए रोशनी की चमक दिखाई पड़ी जो कि तुरंत गायब भी हो गई, पर अब तेल जलने और धातु गर्म होने की महक आ रही थी। बगल वाले कमरे में अब किसी ने लालटेन जलाई थी। मैंने कुछ चलने की आवाज भी सुनी, फिर सब शांत हो गया। हालांकि वो महक अब तेज हो गई थी। आधे घंटे तक मैं कान लगाए तनाव में बैठा रहा, तभी अचानक एक दूसरी तरफ से आवाज सुनाई पड़ी। ये एक बहुत ही शांत और केतली से निकलने वाली भाप की धीमी लगातार आती आवाज की तरह थी। अचानक ही मैंने सुना कि होम्स बिस्तर से उछल पड़ा और माचिस जलाकर उस घंटी वाली रस्सी पर तेजी से अपनी छड़ी मारने लगा। वो जोर से बोला, वॉटसन तुमने देखा? अब तुम इधर देखो। परंतु मुझे कुछ दिखाई ही नहीं दिया। अगले ही पल जब होम्स ने रोशनी जलाई तब मैंने एक धीमी और साफ सीटी की आवाज सुनी, पर अचानक मेरी थकी हुई आंखों में आई चमक ये नहीं समझ पा रही थी कि वो क्या था जिस पर मेरे साथी ने इतने वहशी ढंग से प्रहार किया था। मैंने देखा कि उसका चेहरा डर से पीला पड़ गया था और घृणा से भर गया था। उसने अब चोट करना बंद कर दिया और वो रोशनदान की तरफ घूर रहा था। तभी मैंने एक सन्नाटे को चीरती हुई भयानक चीख सुनी। यह आवाज तेज और बहुत तेज होती चली गई। इस भयानक चीख में पीड़ा, भय और क्रोध सभी कुछ शामिल था। लोग कहते हैं कि दूर गांव में, यहां तक कि चर्च के पास भी उस चीख ने अपने बिस्तरों में दुबके लोगों को जगा दिया था। इससे मेरा दिल भी थोड़ा घबरा गया।
मैं चुपचाप खड़ा होम्स की ओर देखता रहा और वो मुझे। ये तब तक जारी रहा जब तक कि वो आती हुई आवाज बिल्कुल बंद नहीं हो गई। मैंने कहा, इसका क्या मतलब है? क्या मतलब है इसका? होम्स ने जवाब दिया, इसका मतलब है कि सब कुछ खत्म हो गया और शायद अच्छा ही हुआ। अपनी पिस्तौल ले लो, अब हम डॉक्टर रॉयलॉट के कमरे में चलेंगे। अपने चेहरे पर गंभीरता लिए हुए उसने लैंप जलाया और गलियारे की तरफ चल पड़ा। उसने कमरे का दरवाजा दो बार थपथपाया, परंतु भीतर से कोई जवाब नहीं आया। इसके बाद होम्स ने दरवाजे का हैंडल घुमाया और कमरे के भीतर घुसा। मेरे हाथ में पिस्तौल थी। कमरे के अंदर का दृश्य अजीब सा था। मेज पर काले रंग की लालटेन रखी थी और उसका ढक्कन आधा खुला हुआ था। इसकी तेज रोशनी सामने रखी लोहे की तिजोरी पर पड़ रही थी, जिसका दरवाजा भी अध खुला था। इस मेज के बगल में लकड़ी की कुर्सी पर डॉक्टर ग्रिम्सपॉय स्लेटी रंग का गाउन पहनकर बैठे थे। उनके घुटने आगे की ओर निकले हुए थे। उनके पैरों में तुर्की वाली लाल चप्पलें थी और गोद में एक लंबा सा पट्टा था, जिसे हम दिन में देख चुके थे। उनकी ठुड्डी ऊपर की ओर उठी हुई थी और आंखें छत के कोने में भयानक ढंग से घूर रही थी। इनकी बाहों के किनारे पर एक खास तरह के पीले रंग का फीता बंधा था, जिस पर भूरे रंग की चित्तियां थी, जो कि लगता था उनके माथे पर कसकर बांधा था। जब हम कमरे में घुसे तब उन्होंने ना तो आवाज की और ना हिले। होम्स ने फुसफुसाते हुए कहा, फीता, वही वही छींटदार फीता। मैं एक कदम आगे बढ़ा ही था कि अचानक डॉक्टर के सिर पर पड़ी पगड़ी जैसी कोई चीज हिली, फिर उसके बालों के पीछे से एक सांप की भयानक गर्दन और हीरे के आकार जैसा उसका सिर दिखा। होम्स चीखा, अरे ये एक जहरीला सांप है, इंडिया में पाया जाने वाला सबसे जहरीला सांप। इसके काटने पर वो इंसान 10 सेकंड में ही मर जाता है। हिंसा वास्तव में हिंसा करने वाले के पास वापस आती ही है।
षड्यंत्र करने वाला उसी गड्ढे में गिरता है जिसे वो दूसरों के लिए खोदता है। इसको इसकी मान में पहुंचा देते हैं और फिर हम मिस टोनर को किसी ठीक ठाक जगह पर ले जाएंगे। अब यहाँ की पुलिस को पता लगाने दो कि यहाँ क्या हुआ था। इतना कहने के साथ ही उसने उस कुत्ते के पट्टे को झटके से मृतक की गोद से उठा लिया और उसके फंदे को सांप के गले की तरफ फेंका,
फिर उसी के सहारे सांप को फंसा कर उसे उठा लिया और लगभग एक हाथ की दूरी बनाकर रखते हुए वापस उसे तिजोरी में फेंक दिया और फिर तिजोरी बंद कर दी।
स्टॉक मोरॉन के डॉक्टर ग्रिम्सपॉय रॉयलॉट की मौत की ये वास्तविक सच्चाई थी। ये जरूरी नहीं कि मैं इस कहानी को ये कहकर विस्तार से बताऊं कि कैसे हमने उस डरी हुई लड़की को उसकी बुरी स्थिति से बचाया, कैसे हम उस लड़की को सुबह की ट्रेन से उसकी मौसी के घर ले गए और कैसे जांच की वो धीमी प्रक्रिया चली और डॉक्टर की दुर्गति उसके खतरनाक जीवों के साथ खेलने की वजह से हुई। इस केस के बारे में जो भी कुछ थोड़ा बहुत अभी जानना बाकी था, उसे शेरलॉक होम्स ने अगले दिन वापस चलते समय मुझे बताया। वो बोला, वॉटसन, मैं पूरी तरह गलत नतीजे पर पहुंच गया था। आधी अधूरी जानकारी से किसी भी तर्क तक पहुंचना कितना खतरनाक हो सकता है। उन बंजारों की वहां मौजूदगी और उस बेचारी लड़की का फीता शब्द का इस्तेमाल, जिसे उसने माचिस की रोशनी की झलक में ही देखा था, ये सब मुझे भटकाने के लिए काफी था।
मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि यही एक चीज थी जिसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया कि कमरे में रहने वाला जिससे भी डरा, वो चीज बाहर खिड़की या दरवाजे से अंदर नहीं आई थी। जैसे ही मैंने तुम्हें वो रोशनदान और बिस्तर पर लटकती रस्सी दिखाई थी, तभी मुझे इस बात का ख्याल आया था। जमीन से बंधे बिस्तर को देखकर मुझे लगा कि ये रस्सी रोशनदान और बिस्तर तक किसी पुल का काम करने के लिए बांधी गई है। सांप का विचार अचानक ही मुझे कौंधा, क्योंकि डॉक्टर को भारत से ऐसे ही जीप भेजे जाते हैं। अब मैं बिल्कुल ही सही रास्ते पर था, क्योंकि जहर का पता लगाना आसान नहीं था, वो भी तब जबकि एक चालाक और निर्दयी आदमी इसमें शामिल हो। जहर की तेजी भी यही साबित करती थी। मृतक के शरीर पर उन दो छेदों को देखने के लिए भी एक तेज नजर की जरूरत होती है, जहां से वो जहर शरीर में घुसा होगा। फिर मैंने उस सीटी के बारे में सोचा। सुबह की रोशनी उसके शिकार को जगा दे, इससे पहले ही उस सांप को वापस बुलाना होगा। इसीलिए उसने सांप को प्रशिक्षित भी किया था और शायद उसे वापस बुलाने के लिए ही वहां पर दूध भी रखा था। वो इसे उसी समय रोशनदान से होकर बिस्तर तक जाने के लिए रख देता था। सांप कमरे में रहने वाले को काट भी सकता था और नहीं भी काट सकता था। शायद वो एक हफ्ते तक हर रात बच जाती होगी, परंतु एक दिन वो सांप का शिकार बन ही गई। डॉक्टर के कमरे में घुसने से पहले ही मैं इन नतीजों पर पहुंच चुका था।
उसकी कुर्सी को देखकर मुझे पता चल गया था कि वो इसका इस्तेमाल सांप को रोशनदान से भेजने के लिए करता है। तिजोरी, दूध की प्लेट और चाबुक का फंदा देखकर मेरा रहा सहा शक भी जाता रहा। धातु की आवाज जो कि कमरे में रहने वाले को सुनाई पड़ती थी। ये मुमकिन है कि डॉक्टर द्वारा तिजोरी को जल्दी से खोले जाने की वजह से ये आवाज आती थी, क्योंकि सांप तिजोरी में रखा गया था। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए तुम जानते ही हो कि मैंने सबूत के लिए वे कदम उठाए थे। मैंने उस सांप की फुफकारने की आवाज सुनी थी, मुझे उम्मीद है तुमने भी सुनी होगी। फिर मैंने जल्दी से रोशनी जलाई और उस पर आक्रमण कर दिया। सांप को रोशनदान की तरफ से वापस भेजे जाने की वजह से दूसरी तरफ वो अपने ही मालिक पर चोट कर बैठा। साथ ही साथ उस पर मेरी छड़ी की चोट ने उसकी सांप वाली प्रवृत्ति को जगा दिया था, लिहाजा उसके सामने जो भी पहला व्यक्ति आया उसने उसे ही डस लिया। तो इस तरह मैं किसी ना किसी तरह से डॉक्टर रॉयलॉट की मौत का जिम्मेदार हूं, परंतु इसका मेरी आत्मा पर कोई बोझ नहीं है वॉटसन। अभी आप सुन रहे थे कहानी छींटदार फीते का रहस्य, और इसे लिया गया था शर्लोक होम्स के संकलन से। आप तक इस कहानी को पहुंचाया नैनी दीक्षित ने।